लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारी याचना है कि रोगियों को अंतमलन देने वाला संस्कार उनके लिए, उनके परिवारों के प्रिय लोगों के लिए तथा सबके लिए ईश्वर की शक्ति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लाउदातो सी, मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लाउदातो सी के पांचवें अध्याय, दृष्टिकोण और कार्यवाही की दिशाएं की शुरुआत की है। इस अध्याय में संत पापा फ्रांसिस संवाद के उन मुख्य मार्गों को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं जो हमें वर्तमान के उस आत्मघाती भावर जाल जिसमें हम घिरे हुए हैं बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण में नए राष्ट्र और स्थानीय नीतियों के लिए वार्ता की चर्चा करते हुए कहा कि जब तक नागरिक राजनीति सत्ता राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और नगर पालिका को नियंत्रित नहीं करती, तब तक पर्यावरण को होने वाले नुकसान को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। श्रोताओं, हम अपने लिए एक तरह के व्यंजन नहीं पाते हैं क्योंकि हर देश और प्रांत की अपनी ही समस्याएं और सीमाएं हैं। हमारे लिए यह भी सत्य है कि राजनैतिक सच्चाई परिवर्ती मापदंडों और तकनीकियों की मांग करती है, जहां तक वे निष्ठा को निरंतरता में स्वीकार करते हों। वहीं राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों में अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे कि ऊर्जा बचाने के लिए विभिन्न उपयोगों को प्रोत्साहित करना। इसमें अधिकतम ऊर्जा दक्षता और कच्चे माल के कम उपयोग के साथ औद्योगिक उत्पादन के स्वरूपों को बढ़ावा देना, कम ऊर्जा को प्रभावकारी या अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों को बाजार से हटाना, परिवहन प्रणालियों में सुधार करना और इमारतों का निर्माण और इसकी मरम्मत इस आधार पर करना कि वे ऊर्जा की खपत कम करें, साथ ही उनके द्वारा प्रदूषण का स्तर कम हो। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक क्रियाकलाप को चाहिए कि इसकी खपत में परिवर्तन लाए, अपशिष्ट का निवारण और उनका पुनर्चक्रण की अर्थव्यवस्था विकसित करना, कुछ प्रजातियों की रक्षा करना और विविध कृषि और फसलों के चक्रण की योजना बनाना, निर्धन प्रांतों में खेती की गुणवत्ता को ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से बढ़ाना, स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों को बेहतर ढंग से विकसित करना, सिंचाई की व्यवस्था और स्थायी कृषि के विकास हेतु तकनीकियों को विकसित करना, नए तरह की सहकारी स्वरूपों समुदाय संघों को प्रोत्साहन दिया जाना जिससे छोटे उत्पादकों के लाभ को बढ़ावा मिल सके और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को विनाश से बचाया जा सके। सचमुच बहुत कुछ किया जा सकता है। श्रोताओं, यहाँ निरंतरता हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीतियों को सरकार के हर बदलाव के साथ नहीं बदला जा सकता है। परिणाम का आना अपने में समय लेते हैं और तत्काल व्यय की मांग करना जो किसी एक सरकार के कार्यकाल के भीतर ठोस प्रभाव पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए जनता और नागरिक संस्थानों के दबाव के अभाव में राजनीतिक अधिकारी हमेशा हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होंगे, खासकर तब जब तत्काल जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। इन सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना और इसके खर्च को अपने में वहन करना इस बात को धारण करना है कि राजनेता अनिवार्य रूप से अल्पकालिक लाभ और परिणाम की मानसिकता से टकराएंगे जो वर्तमान अर्थव्यवस्था और राजनीति पर हावी है। लेकिन यदि वे अपने में साहसिक हैं, तो वे ईश्वर के द्वारा मिले सम्मान के प्रति संलग्न रहेंगे और हमारे लिए अपने स्वार्थहीन उत्तरदायित्व का प्रमाण देंगे। हमारे लिए एक स्वस्थ राजनीति की नितांत आवश्यकता है जो संस्थानों में सुधार और समन्वयन करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और अनुचित दबाव और नौकरशाही जड़ता पर काबू पाने में सक्षम होती हो। यहाँ हम यद्यपि इस बात को जोड़ सकते हैं कि यहाँ तक कि सबसे उत्तम तकनीकी भी अपने में टूट सकती है जब इसका कोई विशेष उद्देश्य या मूल्य या एक बड़ा और उदार समाज के आधार स्वरूप सेवा करने के लिए एक वास्तविक और गहन मानवतावाद का अंग ना बनता हो। श्रोताओं, एक व्यावसायिक उद्यम और परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन पारदर्शी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की मांग करता है जिसमें विचारों का मुफ्त आदान प्रदान शामिल हो। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के वे रूप जो किसी दिए गए परियोजना के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव को छिपाते हैं, उत्तरदायी कार्यों के बदले में आमतौर पर विशिष्ट समझौते उत्पन्न करते हैं जो पर्याप्त रूप में सूचना नहीं देते और उनमें पूर्ण रूप से बहस नहीं हो पाता है। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किसी व्यावसायिक प्रस्ताव या किसी विशेष नीति, योजना या कार्यक्रम के प्रस्ताव के बाद नहीं किया जाना चाहिए। यह शुरू से ही प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए और इस तरह से किया जाना चाहिए जो अंतः विषय, पारदर्शी और सभी आर्थिक या राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। यह कार्य रूपरेखा की परिस्थितियों और संभावनाओं से संयुक्त हो जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर, स्थानीय अर्थव्यवस्था और जन सामान्य की भलाई हेतु प्रभावकारी हो। इस भांति मुनाफे अपने में अधिक वास्तविक हो सकते हैं जो संभावित परिदृश्यों और संभावित अवांछनीय प्रभावों को ठीक करने के लिए भविष्य के निवेशों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हों। एक जनगणना को चाहिए वह विभिन्न शेयर धारकों के माध्यम पहुंचती हो जो अपने में विभिन्न तरह के बातों, परिस्थितियों और विकल्प को सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को इस विचार मंथन की मेज पर एक विशेष स्थान दिया जाए। वे अपने जीवन और अपने संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं जिससे वे शीघ्र आर्थिक लाभ से परे लक्ष्यों पर विचार कर सकें। सभी इच्छुक पक्षों द्वारा विकसित और बहस की गई नीतियों के पक्ष में पर्यावरण को बचाने के लिए इसे हस्तक्षेप के रूप में सोचना बंद करना होगा। उत्तरार्ध की भागीदारी में ऐसी परियोजनाओं और उनके विभिन्न जोखिमों और संभावनाओं के बारे में पूरी जानकारी होना भी शामिल है। इनमें न केवल प्रारंभिक निर्णय बल्कि विभिन्न अनुवर्ती गतिविधियों और निरंतर निगरानी भी शामिल है। वैज्ञानिक और राजनैतिक विचार विमर्श हेतु हमें ईमानदारी और सच्चाई की आवश्यकता है। इन्हें केवल इस मुद्दे तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए कि किसी विशेष परियोजना को कानून द्वारा अनुमति दी गई है या नहीं। श्रोताओं, पर्यावरण के लिए संभावित जोखिमों का सामना करने की स्थिति में जो अभी और भविष्य में आम भलाई को प्रभावित कर सकते हैं, विभिन्न संभावित विकल्पों के लिए अपेक्षित जोखिमों और लाभों की तुलना के आधार पर किया जाना चाहिए। यह विशेषकर उस परिस्थिति में जहां एक परियोजना में प्राकृतिक संपदाओं का अधिक उपयोग होता है, जहां अधिक कटाव या उत्सर्जन, कूड़े कचरे में वृद्धि या जल जंगल जमीन, संरक्षित प्रजातियों के आवास या सार्वजनिक स्थानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना उत्पन्न होती है। कुछ परियोजनाएं यदि उन पर उचित अध्ययन नहीं किया गया है तो वे विभिन्न कारणों से सामान्य जनजीवन को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, दृष्टि क्षितिज में कमी, सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट या परमाणु शक्ति का प्रभाव, भौतिकतावाद की संस्कृति जो थोड़े समय और अधिक और व्यक्तिगत लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, प्राधिकरणों पर मुहर लगाना या जानकारी छिपाना आसान बना सकते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
सारी सृष्टि में होगी किसी की तो छाया, जिसने रचा होगा सारा जहां, सागर
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मंगलवार 9 जुलाई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस को कीव में दो चिकित्सा केंद्रों, जिनमें सबसे बड़ा यूक्रेनी बाल अस्पताल, साथ ही गाजा में एक स्कूल पर हुए हमले की खबर मिली। संत पापा ने हिंसा में वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की। संत पापा निर्दोष पीड़ितों और घायलों के प्रति निकटता व्यक्त करते हुए आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही ठोस रास्ते निकाले जाएं, जिससे चल रहे संघर्षों को समाप्त किया जा सकेगा। कीव के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने सोमवार को यूक्रेन के शहरों में दर्जनों मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 29 लोग मारे गए और कीव में बच्चों के अस्पताल में विस्फोट हुआ। रूस ने दिन के उजाले में कीव में हाइपरसोनिक मिसाइल से बच्चों के अस्पताल पर हमला किया। इस विस्फोट से अस्पताल की खिड़कियां उड़ गईं और अस्पताल के फर्श पर कांच बिखरा हुआ था। अस्पताल को खाली कराया जा रहा था और मरीजों को शहर में कहीं और ले जाया गया। इस बीच रविवार की सुबह गाजा शहर में होली फैमिली स्कूल के खिलाफ इजरायली सेना द्वारा किए गए एक छापे में कथित तौर पर 4 लोगों की मौत हो गई और स्कूल के कुछ हिस्से नष्ट हो गए, जहां कई फिलिस्तीनी परिवार शरण लिए हुए थे। यह छापा इजरायली सेना द्वारा शनिवार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल पर हमला करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए और वहां शरण लिए हुए 75 लोग घायल हो गए। गाजा अधिकारियों के अनुसार, जिनमें 2 UNRWA कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उधर संत रोजालिया के पार्थिव अवशेषों की खोज में चतुर्थ शताब्दी की वर्षगांठ पर संत पापा फ्रांसिस ने पालेर्मो के महाधर्माध्यक्ष कोराडो लोरेफिस को पत्र लिखकर बधाई दी। संत पापा पालेर्मो महाधर्म प्रांत के विश्वासियों को एक संदेश देकर आध्यात्मिक रूप से एकजुट होना चाहते थे, जो 10 से 15 जुलाई तक अपने संरक्षक संत रोसालिया, एक महिला और प्रेषित की उत्कृष्ट छवि के अवशेषों की खोज की चौथी शताब्दी मना रहे हैं। संत पापा ने संत रोसालिया के ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के उपहार के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया, जिसने अपने प्रभु के प्रेम के लिए एकांत के परीक्षणों को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। संत पापा ने पालेर्मो कलीसिया के विश्वासियों से आग्रह किया कि वे आशा की महिला रोसालिया के साथ आगे बढ़ें, नई आशा की किरण बने, एक जीवित समुदाय बने जो शहीदों के खून से पुनर्जीवित होकर हमारे उद्धारकर्ता मसीह की सच्ची और चमत्कार गवाही देता है। उधर नए नियमों के आधार पर विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग DDF ने उत्तरी इटली में मोंते क्यारी की माता मरियम के प्रति समर्पण के बारे में अपनी सकारात्मक राय व्यक्त की है। यह स्वीकृति संत पापा फ्रांसिस के समर्थन के साथ धर्माध्यक्ष पियर अंतोनियो त्रेमोलादा को एक पत्र के माध्यम से दी गई। आस्था के सिद्धांत के लिए गठित विभाग ने कहा है कि उसे पियरीना गिली द्वारा प्रसारित संदेशों में ऐसा कोई तत्व नहीं मिला जो आस्था और नैतिकता पर कैथोलिक कलीसिया की शिक्षाओं का खंडन करता हो। यह घोषणा 8 जुलाई को प्रकाशित एक पत्र में शामिल है, जिस पर DDF के प्रीफेक्ट मोनसिन्योर विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने हस्ताक्षर किए हैं और संत पापा फ्रांसिस ने इसे मंजूरी दी है। पत्र में मरिया रहस्यपूर्ण गुलाब के प्रति भक्ति और उन संदेशों को संबोधित किया गया है जिनके बारे में पियरीना गिल्ली का दावा है कि उन्हें 1947 और 1966 में कुंवारी मरियम से ये संदेश मिले थे। पत्र में इन संदेशों का सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही कुछ ऐसे तत्वों पर भी ध्यान दिया गया है जिन्हें गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मरिया रहस्यपूर्ण गुलाब और कलीसिया की माता के दर्शन उत्तरी इटली के ब्रेशिया प्रांत में मोंते क्यारी के दक्षिण में स्थित फोंतानेल्ले से जुड़े हैं। दिव्य दर्शन द्रष्टा पियरीना गिल्ली का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। वे एक गृहिणी और नर्स के रूप में काम करती थी। उनके रहस्यमय अनुभव दो अवधियों में फैले हुए हैं। पहला 1947 में, जब मरिया रहस्यपूर्ण गुलाब और कलीसिया की माता की उपलब्धियों के साथ प्रकट हुई, और दूसरा 1966 में फोंतानेल्ले में 13 मई 1966 को माता मरिया ने एक विशिष्ट झरने को शुद्धिकरण के स्थान और अनुग्रह के स्रोत के रूप में इंगित किया। 1966 में उसी स्थान पर एक तीर्थालय का निर्माण शुरू हुआ। 17 दिसंबर 2019 को ब्रेशिया के वर्तमान धर्माध्यक्ष पियर अंतोनियो के नेतृत्व में फोंतानेल्ले तीर्थालय में एक यूकारिस्तीय समारोह के दौरान रहस्यपूर्ण गुलाब कलीसिया की माता का धर्म प्रांतीय तीर्थालय घोषित किया गया। उधर माली, बुर्किना फासो और नाइजर में सैन्य शासन के नेताओं ने 3 सहेल राज्यों के एक संघ की घोषणा की है। सैन्य तख्तापलट में सत्ता संभालने के बाद अपने पहले सम्मेलन में तीनों ने गठबंधन स्थापित करने हेतु एक संधि के लिए एक संयुक्त बयान को अपनाया। अब से नए समूह में सुरक्षा चिंताओं पर सहयोग करने और अंततः एक आम मुद्रा बनाने सहित घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाने की उम्मीद है। तीनों राष्ट्र, जिनकी कुल आबादी 70 मिलियन से अधिक है, हिंसक उग्रवादी गुटों के कारण असुरक्षा से प्रभावित है। नाइजीरिया की राजधानी से जहां सम्मेलन हुआ, बुर्किना फासो के नेता कैप्टन इब्राहिम ने कहा कि शिखर सम्मेलन हमारे साझा स्थान के भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा, साथ मिलकर वे साहिल राज्यों के गठबंधन परिसंघ के निर्माण के माध्यम से सच्ची स्वतंत्रता, शांति और सतत विकास की गारंटी की नींव को मजबूत करेंगे। यह कदम पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से उनके प्रस्थान का भी संकेत देता है, जिसे तीनों नेताओं ने बार बार छोड़ने का संकेत दिया था। वापसी से सुरक्षा सहयोग में बाधा आ सकती है, विशेष रूप से खुफिया जानकारी जुटाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी के मामले में। माली, बुर्किना फासो और नाइजर अपने औपचारिक औपनिवेशिक फ्रांस के प्रतिरोधी हैं और वर्तमान में पश्चिम देशों के साथ ठंडे संबंधों को झेल रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।